फल है इंडिविजुअलिज्म की, जो एक ये लिबरलिज्म सेकुलरिज्म का जो एक पूरे का पूरा फलसफा है, जिसका एक फल है जिस फॉर्म में हमारे सामने आ।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी वजहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावात हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन। तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग लिंक जो है ना शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इस प्रोग्राम को देख सकें। तो हम थोड़ा सा जो है ना इंतज़ार करते हैं इसमें। ओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी वेलकम करता हूँ इस शो में। जो आज का हमारा टॉपिक है हम जिन्स परस्ती से मुतालिक, इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये असल मसला है क्या। हम जिन्स परस्ती को इंग्लिश में LGBTQ भी कहा जाता है ना, इसमें जो ये है मुखफ़ है मुख्तलिफ अल्फाज का, एल से बनता है कि लेस्बियंस जो फीमेल का आपस में होता है जिनसी ताल्लुक, गेज है जी, बी से बायसेक्सुअल्स हैं और इस तरह ए सेक्सुअल्स हैं और इस तरह, ये सब का जो है ना मुख्तलिफ तहारीक हैं, उनको इकट्ठा करके ना एक कंसेप्ट डेवलप किया गया है। हम देखते हैं कि ये जो जब हल से पहले हम देखते हैं कि क्या असल में इसके बैकग्राउंड्स क्या हैं, ये मसला किस तरह पैदा हुआ है, हमारा मज़हब हमें क्या गाइडेंस देता है, फितरत क्या कहती है, और ये कि इस तहरीक के कोई मकासद भी हैं इसके पीछे, उनको जानने की कोशिश करेंगे। हम मगरबी तसव्वुर ज़िंदगी को थोड़ा सा उसमें लाएंगे, और जब हम इस मसले को सबसे पहले समझ लेंगे ना, तो फिर हम इसके हल की तरफ जाएंगे कि हमारे पास एज अ मुस्लिम क्या हल मौजूद हैं। तो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ इस सवाल से कि ये मसला क्यों पैदा हुआ है, क्या इसकी कोई नज़रियाती असास भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जाऊंगा डॉक्टर उमर साहब की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम उमर भाई और बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी। जी, आज का जो टॉपिक है काफ़ी, आई थिंक टाइटल में भी एक तूफ़ान है जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है, और इसको इसके नज़रियाती असास को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस वजह से इस किस्म की तहरीक पैदा हो रही है। मेरा ख्याल है कि हमने इस बारे में आपस में तो अक्सर गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों को उसकी खबर ना हो कि ये असल में एक फल है इंडिविजुअलिज्म की, जो एक ये लिबरलिज्म सेकुलरिज्म का जो एक पूरे का पूरा फलसफा है, जिसका एक फल है जिस फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है, जिसके अंदर जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसके ऊपर किसी किस्म की कदगन जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना, ये उनका बुनियादी फलसफा है कि हम जो हमारा मॉरल कोड है, जो हमारा मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो डिवाइन किसी ज़रिए से नहीं तय की जाएंगी, बल्कि वो इंसान खुद ही अपनी ख्वाहिशात से या अपने एग्रीमेंट से उसके ऊपर उसको तय करेंगे, और ये एक्चुअली अभी मतलब उसकी एक मैनिफेस्टेशन है। तो नज़रियाती एहसास इसकी यही है कि जो वही है वो ज़रिया नहीं है इखलाकी हदूद का, बल्कि इंसान जो है वो खुद अपनी इखलाकी हदूद तय करेगा।
डॉक्टर साहब, आप कुछ कहेंगे इस मामले में?
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, ये शो आपने अरेंज किया, और डॉक्टर उमर ने काफ़ी अच्छी बात बताई है। बेसिक तो इसका यही है कि एक इंडिविजुअल की जो खुशी है और जैसा वो करना चाहता है वो कर ले, और इसमें लेकिन एक चीज़ ऐड कर देते हैं लिबरलिज्म में भी, और ये हमें यहाँ भी मेंशन कर देनी चाहिए कि एज फार एज इट्स नॉट हर्टिंग एनीवन देन इट्स ओके टू गो ऑन विद इट, तो ये ज़रूर कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ भी कहूँगी। इसका थोड़ा सा जो पस मंजर है वो जैसे उसकी बेस डॉक्टर उमर ने बताई है कि यही है, लिबरलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म भी है जाहिर है किसी हद तक, लेकिन जैसे अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें तो एक तो कुछ लोग फ्रॉयड को जो है वो सिगमंड फ्रॉयड को भी किसी ना किसी तरह इसमें ले आते हैं। मैं वैसे फ्रॉयड को बहुत ज़्यादा अपना मेंटोर मानती हूँ, लेकिन ऑफकोर्स अगर हम किसी को मेंटोर भी माने तो जाहिर है कि वो Nobody is saint and all good. Yeah, ज़ाहिर है हमने बहुत कुछ सीखा है फ्रॉयड के साइकोनालिटिक थ्योरी से, लेकिन उसमें एक जो चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा उसने ये फोकस किया, बाद में यंग ने इसको कार्ल यंग ने और काफ़ी लोगों ने मिलानी क्लाइन वगैरह ने इनको थोड़ा सा कहा भी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा आपने सेक्शुअल लिबर्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और इन्होंने मतलब फ्रॉयड का ये था कि ज़्यादातर जो इश्यूज़ होते हैं वो सेक्शुअल रिप्रेशन की वजह से होते हैं ह्यूमंस में, लेकिन उस वक्त तक ऑफकोर्स ये मतलब होमोसेक्सुअलिटी का या LGBTQ का कोई ऐसा इतना ज्यादा नहीं था, ऑफकोर्स एक्सेप्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं थी इसके बाद. लेकिन इसको कहते हैं कि जब उन्होंने ये बात शुरू कर दी कि असल जो जड़ है हर प्रॉब्लम की या ज्यादातर प्रॉब्लम्स की वो रिप्रेशन है अपने माइंड के अंदर, और इसी से न्यूरोसिस होता है, इसी से जितनी एंजाइटीज शुरू होती हैं और वो फिर जाहिर है चीजें डेवलप होती जाती हैं. इसके बाद लोग कहते हैं कि मतलब जब जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन है अमेरिका में जैसे 1960s में 1970s में जो आई, उसमें ये कहा गया कि मतलब कि आप सेक्सुअल नॉर्म्स को, मोरालिटी को, स्पेशली विमेन की आप जो है मतलब उसे चेंज करते हैं. आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज हुई, लेकिन बहुत आहिस्ता भी नहीं था. और जब विमेन की जो मोरालिटी और नॉर्म्स चेंज होने लगे तो फिर उनके साथ ही ये लेस्बियंस का आना शुरू हो गया, फिर जाहिर है गेज ने अपने राइट्स डिमांड करने शुरू कर दिए, और उसके बाद जो ये हम LGBT ट्रांसजेंडर होता है और क्यों जो है वो क्वियर या क्वेश्चनिंग है कि दे आर स्टिल क्वेश्चनिंग देयर सेक्सुअलिटी एंड एक्सप्लोरिंग देयर जेंडर आइडेंटिटी. तो इस चीज से मतलब इस सबका जो है वो पास्ट इस तरह से रिलेटेड है कि बेसिकली इट्स अबाउट वी कैन से टू सम एक्सटेंट आई माइट बी रॉन्ग एंड इट्स ओके एनीवन कैन करेक्ट मी, लेकिन सेक्सुअल लिबर्टी एंड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आई थिंक दे आर वन ऑफ द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस आइडियोलॉजी मेरा जहां तक ख्याल है. थैंक यू, मैं भी इतना ही कहना
चाहूंगा. हमारा जो दीन है हमें ये कहता है कि बुनियादी जो हमारा कदर है ना, जिसके ऊपर हमारा पूरा कल्चर या हमारा पूरा चीज खड़ी है, वो है हया असल में, जिसको मैं समझता हूँ.